शांतिष्ठक सूत्र पांचवी शताब्दी का एक ऐसा संस्कृत काव्य है जिसमें कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भगवान के चरण युगल की ही स्तुति की है और जो अनुश्रुति है उसके अनुसार इस स्तोत्र के प्रभाव से उन्हें अपनी नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त हो गई। नेत्र ज्योति का विलय सूर्य किरणों की तीक्ष्णतावश हो गया था, लेकिन भक्ति की शक्ति से उनकी नेत्र ज्योति पुनः लौट आई। आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी ने शांतिष्टक स्तोत्र की संस्कृत टीका लिखी है। उस संस्कृत टीका में उन्होंने आचार्य पूज्यपाद स्वामी के विषय में उसी घटना का उल्लेख करते हुए कहा है कि उनकी नेत्र ज्योति चली गई थी और फिर कैसे लौट आई। वो पंक्तियां एक बार देख लेते हैं। श्री पाद पूज्य स्वामी संजात चक्षुस्तिमिरव संजात चक्षुस्तिमिराद व्याधिस तद्विनाशार्थम श्री शांतिनाथस्य न स्नेहादित्यादि स्तुतिमाह। श्री पाद पूज्य स्वामी, यहां पर ऐसा शब्द दिया है, बाकी प्रसिद्ध है कि ये पूज्यपाद स्वामी की रचना है। कैसे है पूज्यपाद स्वामी? तो संजात चक्षुस्तिमिरादि व्याधि उत्पन्न हुई है चक्षु में तिमिर आदिक व्याधि जिन्हें, यानी आंखों में अंधकार वगैरह छा गया है, और भी पीड़ाएं हैं आंखों में। तद विनाशार्थम श्री शांतिनाथस्य, उसका विनाश करने के लिए, यानी देखिए इसमें दो अर्थ निकलते हैं कि एक तो वो स्तुति आंखें ठीक करने के लिए कर रहे हैं और दूसरा अर्थ ये निकलता है कि उनकी की हुई स्तुति आंखों को ठीक करने के लिए समर्थ हो गई। तो शांतिनाथ भगवान की नस नेहाद इत्यादि स्तुतिम आह, ऐसी स्तुति करते हैं। तो आठ काव्यों में यह स्तोत्र संपन्न होता है जिसके अर्थ का स्वाध्याय संपन्न हुआ था और अब इन शताब्दियों में कुछ ऐसे वृत्तांत है, कुछ ऐसे उदाहरण है जो यहां तक जानकारी में आए हुए हैं कि इस स्तोत्र के पाठ से जिस प्रकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी नेत्र व्याधि से रहित हो गए थे, उसी प्रकार अन्य भी बहुत से लोग आंखों की कई बाधाओं से मुक्त हो चुके हैं। एक अत्यंत मार्मिक दृष्टांत यहां पर हम सबसे पहले प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जब मुनि निर्वाण सागर महाराज बड़नगर मध्य प्रदेश में जो मंदिर है बीसपंथी शांतिनाथ जिनालय वहां पहुंचे तो उनको सायंकाल सिर में बड़ी तीव्र पीड़ा उठी और उस शिरःशूल की वेदना से ग्रस्त होकर वो रात भर शांतिनाथ भगवान के ही सामने बैठे रहे और दर्द इतना तेज था कि उन्होंने दोनों घुटने ऐसे ऊपर कर लिए और सिर को घुटनों के बीच में ऐसे रख लिया और इस अवस्था में घंटों बीत गए। प्रभात हुई और जब मंदिर में सब आवागमन प्रारंभ हो गया तब उन्होंने अपनी सब प्रातःकालीन क्रियाएं संपन्न की, पर जब मंदिर का उजाला किया गया तब उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनके पास श्रावक लोग आए, वहां के ट्रस्टीज आए और फिर पूछा कुछ लोगों ने कि शाम को आपको सिर में तकलीफ थी, अभी कैसा है? तो बोले कि अभी तो एक नई तकलीफ हो गई मुझे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर ये समाचार ऐसी समाज में चर्चा का विषय बन गया, लोग चिंतित हुए। फिर कुछ लोगों ने डॉक्टर को बुलवाया, डॉक्टर्स ने सलाह दी कि आंखों के स्पेशलिस्ट को दिखाना ठीक रहेगा। तो फिर ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ जिनको कहते हैं, वो आए, उन्होंने आंखों को देखा तो ऐसे बैठने के कारण जो प्रेशर पड़ा था, आंखों पर दबाव आया था, उसके कारण आंखों के पीछे वाले पर्दे पर छाले पड़ गए थे और वो बड़ी विकट स्थिति हो गई थी। उन्होंने कहा तो ये तो बड़ी समस्या वाली स्थिति आ गई है। फिर सभी लोगों ने, जितने मेडिकल फील्ड वाले जितने भी आंखों के जानकार थे, उन्होंने आकर के जांच की और जांच करने के बाद सब ने एक स्वर से कह दिया कि महाराज की आंखें चली गई। समाज में बड़ी आकुल व्याकुलता हो गई और फिर उन मुनिराज ने भी आहार जल का त्याग कर दिया। एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गया, बीच बीच में वो देखते थे आंखों को, पर आंखों की स्थिति में कोई सुधार नहीं था। जब 7 दिन बीतने वाले थे तब महाराज ने बोला कि मेरी संलेखना करा दो। तो बोले कि कोई आचार्य कोई साधु तो है नहीं आसपास, तो बोले कोई विद्वान को बुला दो। तो फिर परिचय रहा होगा, नागपुर के एक विद्वान थे प्रोफेसर हीरालाल राय बागकर, बगेरवाल समाज के एक अच्छे विद्वान थे, अंग्रेजी भी जानते थे, हिंदी संस्कृत भी जानते थे, मराठी भी जानते थे। उन्होंने समाधि तंत्र का भी अनुवाद किया और अन्य भी अनुवाद किए हैं। तो फिर उनको खबर की गई कि आप जल्दी आ जाओ, यहां पर ऐसी ऐसी स्थिति बनी है। तो फिर वो जल्द से जल्द वहां आ पहुंचे। उन्होंने आकर के मुनिश्री को नमोस्तु किया और सब लोग समाज वाले ये सोच रहे थे कि अब संलेखना हो जाएगी महाराज की, उनकी आंखें तो चली गई हैं, तो अच्छा हुआ पंडित जी आ गए हैं। लेकिन ये प्रोफेसर साहब कुछ औषध उपचार का भी ज्ञान रखने वाले थे, होम्योपैथी आयुर्वेद वगैरह हर्बल मेडिसिंस को जानते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि महाराज श्री मुझे पहले वैयावृत्ति का अवसर दीजिए, ऐसे कैसे संलेखना करा दूं मैं। तब महाराज बोले कि सब डॉक्टरों ने तो कह दिया है कि आंखें चली गई है, अब कभी ठीक नहीं होगी। उन्होंने बोला कि मुझे कोशिश तो करने दीजिए, मैं संलेखना नहीं कराऊंगा ऐसे। तो उनकी बातचीत जो लोग सुन रहे थे उन लोगों को लग रहा था कि क्या मतलब महाराज की भावना है संलेखना की, और फिर इनको उसके लिए बुलाया था और फिर ये यहां पर आनाकानी कर रहे हैं। पर फिर भी महाराज श्री से कहा कि महाराज मुझे अनुमति दीजिए वैयावृत्ति की, पहले मैं प्रयत्न तो कर लूं। बोले महाराज ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम प्रयत्न कर लो पहले, फिर संलेखना करा देना। बोले कि जब कोई उपचार नहीं होगा तो जरूर करा दूंगा, मैं पूरी मदद करूंगा, जो भी मुझसे बनेगा वो सब करूंगा। फिर महाराज श्री ने समाज वालों से कहा कि ये कुछ उपचार करना चाहते हैं तो इनको जो भी करना है करने दीजिए। समाज वालों ने बोला कि क्या चाहते हैं आप बताइए, आप हमें आदेश दीजिए, हम वो चीज उसका प्रबंध कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि मुझे घृत कुमारी के पत्ते चाहिए, जिसको गवार पाठा कहते हैं, तो लोगों ने ला करके दिया पत्ता एक। तो उन्होंने पत्ते का जो कठोर भाग था उसको अलग कर दिया, अंदर का जो जेली वाला हिस्सा था उसको ऐसे ले लिया और शांतिनाथ भगवान के सामने जा करके उनके चरणों में बैठकर शुद्ध वस्त्र धारण करके यही शांतिष्टक स्तोत्र पढ़ा और फिर पूज्य मुनिश्री की आंखों पर वो पट्टी लगा दी, ऐसे पट्टी के रूप में वो पत्ता लगा दिया। फिर जितने समय तक उनको रखना था रहने दिया और फिर उसको उठा करके अलग कर दिया। ऐसा इन्होंने दिन में 4 बार किया। फिर जो दर्शक थे वो चाहते थे कि कुछ महाराज जी बोले या फिर कुछ ये बोले, लेकिन कुछ नहीं, ये क्रम चलता रहा। 8 उपवास, 9 उपवास, 10 उपवास, 11 उपवास, 12 उपवास, 13 उपवास हो गए। फिर जनता में खलबली हो गई कि ये क्या कर रहे हैं, महाराज जी तो बिना आहार और बिना जल के तो ऐसे प्राणांत हो जाएगा, ये संलेखना भी नहीं करा रहे, पट्टी लगाते चले जा रहे हैं, रोज रोज 4-4 पट्टियां लगा रहे हैं। तो सारी जनता आकुल व्याकुल थी। अंत में जब उनका 14वां उपवास हुआ तब अचानक महाराज श्री बोले कि आज मुझे कुछ दिख रहा है। तहलका मच गया, अरे ये क्या हो गया। फिर सबके आंखों में आंसू आ गए और सबने उनके प्रति जो अपने भाव थे वो निर्मल बना लिया और फिर उनसे कहा कि आपने कमाल कर दिया। बोले कि मैंने कोई कमाल नहीं किया, ये सब शांतिष्टक स्तोत्र का चमत्कार है। और अब महाराज जी ने चूंकि 14 दिनों से पानी नहीं पिया है, आहार नहीं लिया, तो उनको अपन पानी पिलाएंगे। महाराज जी बोले मुझे इतना नहीं दिख रहा है कि मैं पानी पी लूं। तो फिर बोले महाराज श्री हम देवशास्त्र गुरु की शपथ पूर्वक आपको शुद्ध जल दे रहे हैं, आपको थोड़ा तो दिख रहा है ना, हम बिल्कुल अगर कुछ भी निकल आया तो हम आपको बता देंगे, आप अंतराय कर देना, लेकिन पानी आपको लेना है, हमारी ये प्रार्थना है, हम लोग सहन नहीं कर सकते, ये 14 दिन हमने कैसे निकाले। अगर एक दिन अपना बच्चा भोजन न करे तो कितनी तकलीफ होती है। और उन मुनिराज ने 14 दिनों तक भोजन नहीं किया था तो फिर भक्तों की क्या दशा होगी, ये सिर्फ मुनि भक्त जान सकते हैं, कुतर्क करने वाले इस भावना को कभी नहीं समझ सकते। तो बड़ी वेदना थी लोगों में। फिर उन्होंने प्रोफेसर साहब ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी ऐसी विकट स्थिति में आप कोई भी प्रायश्चित कर लेना, लेकिन अभी जो सबको वेदना हो रही है उस पर आप करुणा कीजिए, और आपको कोई दोष भी नहीं लगने वाला है, आपको सिर्फ पानी पीना है, शुद्ध पानी, और विधिवत हम लोग देंगे। और चूंकि आपने कहा है कि आपको कुछ कुछ दिख रहा है, इसलिए हमारा ये निवेदन है। 4 दिन तक फिर वो उपचार चालू रहा और पानी लेते रहे वो, और उसके बाद उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। शांतिनाथ भगवान की भक्ति अपने आप में बड़ी अनूठी है। तो जब इस युग में ऐसी घटना हुई, फिर अंत में उनके 1991 में उपाध्याय गुप्ति सागर मुनिराज के सानिध्य में इंदौर के शांतिनाथ जिनालय में ही संलेखना हुई थी, अच्छे ढंग से उनकी संलेखना हुई थी। तो ऐसे ही निर्वाण सागर मुनिराज एक ऐसे उदाहरण है जो शांत्यष्टक से लाभान्वित हुए थे। उस शांत्यष्टक का जो स्तोत्र पाठ है वो भी यहां पर, एक साथ 8 काव्यों का पाठ अभी तक हमने नहीं किया है, अवसर आने पर उसका भी पाठ किया जाएगा। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।